एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक सफर पर। सौर मंडल के जो अजूबे हैं और उससे भी परे जो दुनियाएं हैं उनकी खोज करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रहों की, वो आकाशीय पिंड जिन्होंने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है।
हाँ बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे डेविड ए रॉथरी। वो एक जाने माने प्लैनेटरी साइंटिस्ट हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो उनके काम पर आधारित है, खासतौर पर उनकी एक किताब है प्लैनेट्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और एक और किताब है प्लैनेट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें।
हाँ, और ये टॉपिक आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि पिछले कुछ दशकों में आप देखें, स्पेस मिशंस की वजह से ग्रहों के बारे में हमारी समझ बिल्कुल बदल गई है। हम लगातार नई दुनियाएं खोज रहे हैं, जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं, और इस सब के बीच हम अपने घर यानी पृथ्वी को भी बेहतर जान पा रहे हैं।
बिल्कुल। रॉथरी यही समझाती हैं कि ग्रहों को समझना सिर्फ दूरबीन से तारे देखना नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी है, हमारे सौर मंडल का इतिहास अरबों साल पुराना, और ये समझना कि इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है उसकी चाबी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। अच्छा, इससे पहले कि हम ग्रहों की दुनिया में पूरी तरह खो जाएं, थोड़ा डेविड ए रॉथरी के बारे में जान लेते हैं। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, वो खुद एक एक्टिव साइंटिस्ट हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं।
सही कहा, वो यूके की जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां प्लैनेटरी जियोसाइंसेस के प्रोफेसर हैं, ग्रहों का भूविज्ञान। उनकी खासियत यही है ग्रहों की सतहों को समझना। वहां के पहाड़, ज्वालामुखी, पत्थर, बर्फ, इन सबको वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई जियोलॉजिस्ट पृथ्वी को देखता है।
हाँ, सिर्फ आसमान में गोले नहीं बल्कि बदलती हुई जमीनें। और कमाल की बात यह है कि वो स्पेस मिशन से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के साथ काम करती हैं, खासकर जो बुध ग्रह के लिए बेपी कोलंबो मिशन गया है उस पर।
अच्छा,
तो उन्हें पता है कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे होता है, अंतरिक्षयान भेजना, डेटा लाना, कितना मुश्किल और रोमांचक है।
हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अनुभव है। और क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें मुश्किल वैज्ञानिक बातें आसान शब्दों में समझाना बहुत अच्छे से आता है।
बिल्कुल, इसीलिए उनकी किताबें खास हैं। वैज्ञानिक तौर पर एकदम सटीक, पर भाषा ऐसी कि कोई भी समझ जाए। वो एक ऐसे वैज्ञानिक की नज़र से ग्रहों की कहानी सुनाती हैं जो पत्थरों और बर्फ में इतिहास पढ़ सकता है।
तो रॉथरी की किताबें, खासकर वो अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली, वो हमें ग्रहों के बारे में आज की जो समझ है उसका एक तेज लेकिन बहुत जानकारी भरा टूल कराती हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, आम लोगों तक पहुंचाना हमारे सौर मंडल और उससे भी आगे जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके बारे में ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी, वो भी बिना डरावने साइंटिफिक शब्दों के।
हाँ, और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि स्पेस मिशंस ने सब कुछ बदल दिया है, ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया है। अब वो सिर्फ आसमान में चमकते हुए डॉट्स नहीं है, अब हमें पता है कि ये जटिल दुनियाएं हैं, डायनामिक हैं, इनका अपना भूविज्ञान है, अपना मौसम है, और कुछ में तो जीवन की संभावना भी।
ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और रॉथरी एक बहुत जरूरी तरीके पर जोर देते हैं, तुलनात्मक ग्रह विज्ञान, कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी जिसे कहते हैं। इसका मतलब है अलग अलग ग्रहों की तुलना करके समझना। जैसे अगर हमें यह समझना है कि पृथ्वी इतनी खास क्यों है, तो हमें शुक्र को देखना होगा कि वहां क्या गड़बड़ हुई, या मंगल को देखना होगा कि वहां पहले क्या था जो अब नहीं है।
बिल्कुल, एक ग्रह की कहानी दूसरे को समझने में मदद करती है। ये किताबें हमें सौर मंडल के जन्म से लेकर आज तक की यात्रा कराती हैं, कैसे ग्रह बने, अंदर वाले चट्टानी ग्रह कैसे हैं, बाहर वाले विशाल ग्रह कैसे हैं, और फिर हमारे सौर मंडल से बाहर एक्सोप्लैनेट्स की खोज और जीवन की तलाश। ये दिखाती हैं कि विज्ञान रुका हुआ नहीं है, वो लगातार सीख रहा है, बदल रहा है।
चलिए अब कुछ मुख्य बातों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, खासकर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के हिसाब से। पहला मजेदार सवाल रॉथरी उठाते हैं, ग्रह आखिर है क्या? याद है 2006 में प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया था?
हाँ हाँ, बड़ा विवाद हुआ था उस पर तो।
और रॉथरी वहीं से शुरू करते हैं।
हाँ, क्योंकि ये विवाद दिखाता है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IAU, उसने 2006 में तय किया कि ग्रह कहलाने के लिए तीन शर्तें होंगी। पहला, सूरज का चक्कर लगाता हो।
ठीक है।
दूसरा, इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से लगभग गोल हो जाए। वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली बात,
गोलमटोल, हाँ,
और तीसरा अपनी कक्षा के आसपास का रास्ता साफ कर चुका हो, मतलब छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हटा दिए हों।
और प्लूटो बेचारा इसी तीसरी शर्त पर अटक गया।
बिल्कुल, वो कुइपर बेल्ट में है जहाँ और भी बहुत सारी बर्फीली चीजें हैं। वो अपनी कक्षा एरिस जैसे दूसरे पिंडों के साथ शेयर करता है।
तो रास्ता साफ नहीं किया उसने?
नहीं।
रॉथरी कहती है कि ये परिभाषा बदलना कोई बुरी बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। विज्ञान कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है।
सही बात है। फिर अगला बड़ा सवाल आता है, ग्रह बनते कैसे हैं?
जी,
ये दूसरे अध्याय में है। रॉथरी हमें नेब्यूलर हाइपोथेसिस के बारे में बताती हैं, मतलब लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, नेब्यूला, वो अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ने लगा। ज्यादातर हिस्सा बीच में जमा होकर सूरज बन गया और जो बाकी बचा वो एक चपटी डिस्क में घूमने लगा सूरज के चारों ओर।
और इसी डिस्क में सारा खेल हुआ फिर?
हाँ बिल्कुल, धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे, जैसे कमरे में धूल जमा हो जाती है ना कोने में, वैसे ही। इसे एक्रीशन कहते हैं। चिपकते चिपकते ये बड़े होते गए, पहले बने प्लैनेटिसिमल, छोटे ग्रह जैसे।
अच्छा।
फिर ये आपस में टकराए, जुड़े और बड़े होते गए, बने प्रोटो प्लैनेट, और फिर आखिरकार हमारे ग्रह तैयार हुए।
लेकिन ये अंदर वाले चट्टानी और बाहर वाले गैस वाले क्यों बने, इसका क्या कारण था?
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है
जी।
यहाँ काम आती है फ्रॉस्ट लाइन। सोचिए जैसे आग के पास ज्यादा गर्मी होती है और दूर कम,
हाँ।
वैसे ही सूरज के पास बहुत गर्मी थी, तो इस फ्रॉस्ट लाइन के अंदर सिर्फ पत्थर और धातु ही ठोस रह सकते थे। पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी चीजें भाप बन जाती थी।
इसीलिए अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने।
बिल्कुल। और इस फ्रॉस्ट लाइन के बाहर वहाँ इतनी ठंड थी कि ये गैसें भी बर्फ बनकर जम सकती थी। पानी की बर्फ, अमोनिया की बर्फ, मीथेन की बर्फ। तो बाहरी ग्रहों को बनने के लिए ज्यादा मटेरियल मिल गया, चट्टान, धातु और साथ में ढेर सारी बर्फ।
अच्छा, इसलिए वो इतने बड़े हो गए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, गैस और बर्फ के दानव।
हाँ, ये फ्रॉस्ट लाइन ही सौर मंडल के दो हिस्सों के बीच का बड़ा अंतर समझाती है।
चलिए अब आते हैं अंदरूनी चट्टानी ग्रहों पर, अध्याय 3 में उनकी तुलना करते हुए। बुध, मर्क्यूरी, सूरज के सबसे पास छोटा सा ग्रह, दिन में भयानक गर्मी, रात में भयानक सर्दी।
हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके ध्रुवों पर कुछ गड्ढों में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, वहाँ पानी की बर्फ मिली है।
सच में? बुध पर बर्फ?
हाँ, पेप्पी कोलंबो मिशन इसी के और राज खोलेगा।
शुक्र, वीनस, पृथ्वी का बिगड़ा हुआ जुड़वा भाई कहते हैं इसे।
हाँ, साइज में तो पृथ्वी जैसा है, पर सतह, उफ, तापमान इतना ज्यादा कि सीसा पिघल जाए, और हवा का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा।
बाप रे, क्यों है ऐसा?
वजह है अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट,
रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट।
इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना है कि गर्मी अंदर तो आ जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती।
ये तो एक तरह की चेतावनी है हमारे लिए।
बिल्कुल।
पृथ्वी, हमारा घर, यहाँ सब कुछ एकदम सही है ना?
हाँ, एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। प्लेट टेक्टोनिक्स है, सतह पर लिक्विड पानी के महासागर है, बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ऑक्सीजन वाला वायुमंडल है।
ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है।
बहुत।
मंगल, लाल ग्रह, आज तो ठंडा और सूखा दिखता है,
लेकिन सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरगों साल पहले यहाँ नदियां बहती थीं, झीलें थीं, शायद समुद्र भी।
रोवर्स वहाँ पुरानी घाटियों और डेल्टा के निशान खोज रहे हैं लगातार।
हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वहाँ कभी जीवन था, या शायद अब भी है जमीन के नीचे कहीं? खोज जारी है। अब फ्रॉस्ट लाइन के पार चलते हैं बाहरी विशाल ग्रहों की तरफ। अध्याय 4, बृहस्पति यानी जुपिटर, ग्रहों का राजा, एक गैस जायंट। इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं, इतना बड़ा है ये।
और इसका वायुमंडल भी बड़ा तूफान लगता है।
हाँ, वो रंगीन पट्टियाँ और ग्रेट रेड स्पॉट।
हाँ, वो ग्रेट रेड स्पॉट तो एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है।
और इसके चार बड़े चांद, गैलीलियन मून्स, वो अपने आप में दुनियाएं हैं। आयो पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं, सौर मंडल में सबसे ज्यादा एक्टिव।
अच्छा।
यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समुद्र हो सकता है, जीवन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद। गैनीमेड सबसे बड़ा चांद है पूरे सौर मंडल का, और कैलिस्टो बहुत पुराना और शांत दिखता है।
शनि अपने खूबसूरत छल्लों यानी रिंग्स के लिए मशहूर है।
हाँ, वो छल्ले ज्यादातर पानी की बर्फ के छोटे छोटे कणों से बने, अरबों कण।
कैसिनी मिशन ने तो कमाल की जानकारी भेजी थी शनि के बारे में।
बिल्कुल, और शनि का चांद टाइटन वो तो गजब ही है। इतना घना वायुमंडल है नाइट्रोजन का, और सतह पर मीथेन की झीलें और नदियां बहती हैं।
मीथेन की नदियां, कमाल है।
हाँ, और एक और छोटा सा चांद है एनसेलाडस। वो अपनी बर्फीली सतह के नीचे के समुद्र से पानी के फव्वारे अंतरिक्ष में फेंकता है, गीजर की तरह।
क्या बात है, तो वहाँ भी जीवन की संभावना है?
बहुत ज्यादा। ये आजकल जीवन की खोज के लिए टॉप टारगेट्स में से एक है।
अरुण और वरुण, इन्हें बर्फ के दानव कहते हैं।
हाँ, क्योंकि इनमें बृहस्पति शनि की तरह सिर्फ गैस नहीं है, बल्कि पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी चीजों की जमी हुई बर्फ बहुत ज्यादा है
कोर के ऊपर।
अच्छा,
अरुण तो अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ। हाँ, वो अजीब है। और वरुण पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, है ना?
हाँ, सुपरसोनिक स्पीड से भी तेज।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोथरी बर्फीली दुनियाओं और बौने ग्रहों के महत्व पर भी जोर देते हैं। अध्याय 5।
हाँ, प्लूटो फिर से चर्चा में आता है। 2015 में जब न्यू होराइजन्स मिशन वहां पहुंचा तो सब हैरान रह गए।
क्या मिला वहां?
प्लूटो कोई मरा हुआ ठंडा पत्थर नहीं है, वो एक एक्टिव दुनिया है। वहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, नाइट्रोजन गैस के ग्लेशियर बह रहे हैं, मैदान है।
कौन सोच सकता था इतनी दूर इतनी ठंड में ऐसा कुछ होगा?
बिल्कुल, इसने हमारी सोच बदल दी। और फिर से जोर दिया जाता है बर्फीले चंद्रमाओं पर, यूरोपा और एनसेलाडस। ये अब जीवन की खोज के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं।
और यहाँ तरल पानी सूरज की गर्मी से नहीं है?
नहीं, यहाँ पानी शायद अपने बड़े ग्रहों बृहस्पति और शनि की जबरदस्त ग्रेविटी के खिंचाव से पैदा होने वाली गर्मी, जिसे टाइडल हीटिंग कहते हैं, उसकी वजह से तरल अवस्था में मौजूद है।
टाइडल हीटिंग, अच्छा।
सोचिए, बर्फ की मोटी चादर के नीचे अंधेरे समुद्रों में जीवन।
गजब की संभावना है ये तो।
और अब हम अपने सौर मंडल के आंगन से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे तारों के ग्रहों की दुनिया में, यानी एक्सोप्लैनेट्स। अध्याय 6। पिछले 30 सालों में हजारों ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं, हजारों।
हाँ, ये तो कमाल की बात है, इनको खोजते कैसे इतनी दूर?
रोथरी दो मुख्य तरीके बताती हैं। एक है ट्रांजिट मेथड, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, कम हो जाती है। केपलर जैसे टेलीस्कोप यही गिरावट देखते हैं।
अच्छा, तारे की टिमटिमाहट में बदलाव।
हाँ बिल्कुल। दूसरा है रेडियल वेलोसिटी मेथड, ग्रह की ग्रेविटी अपने तारे को भी हल्का सा खींचती है, जिससे तारा थोड़ा डगमगाता हुआ दिखता है हमें, तारे का वजन भी थोड़ा हिलता है।
हाँ, उस डगमगाहट को मापकर ग्रह का पता चल जाता है, उसके वजन का अंदाजा लग जाता है।
और इन खोजों से क्या पता चला है? क्या सब हमारे सौरमंडल जैसे ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खोजों में हमें हैरान कर दिया है। हमें हॉट जुपिटर मिले हैं, बृहस्पति जितने बड़े ग्रह जो अपने तारे से बिल्कुल चिपके हुए घूमते हैं, कुछ ही दिनों में चक्कर पूरा कर लेते हैं।
गर्म बृहस्पति।
हाँ, सुपर अर्थ मिले हैं, पृथ्वी से बड़े चट्टानी ग्रह, और मिनी नेपच्यून भी मिले हैं, जिनका हमारे सौर मंडल में कोई उदाहरण ही नहीं है।
तो मतलब ग्रहों के बनने और टिकने के कई और तरीके हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे।
बिल्कुल, इससे पता चलता है कि प्रकृति कितनी विविध है, हर सौर मंडल हमारे जैसा नहीं होता।
और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या कहीं और जीवन है?
अध्याय 7।
हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रोथरी पहले हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन के बारे में बताती हैं, मतलब तारे से वो सही दूरी जहाँ ग्रह की सतह पर पानी तरल रह सके, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा,
जैसे पृथ्वी है। हाँ, लेकिन फिर वो कहती हैं, रुको, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसा हमने यूरोपा और एनसेलाडस में देखा, जीवन तो इस पारंपरिक जोन के बाहर भी हो सकता है, उन बर्फीले चंद्रमाओं के अंदरूनी समुद्रों में।
हाँ, जहाँ टाइडल हीटिंग है।
बिल्कुल, तो अब वैज्ञानिक सिर्फ पानी नहीं बल्कि बायोसिग्नेचर खोज रहे हैं।
बायोसिग्नेचर, ये क्या है?
मतलब जीवन के रासायनिक संकेत। किसी ग्रह के वायुमंडल में ऐसी गैसें मिलना जो शायद जीवन की वजह से ही वहां हों, जैसे अगर कहीं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिले और उसकी कोई और भूवैज्ञानिक वजह ना समझ आए, तो शायद वो जीवन का संकेत हो।
अच्छा, मतलब वायुमंडल की जांच करके।
हाँ, कुल मिलाकर हम एक ऐसे रोमांचक दौर में हैं जहां क्या हम अकेले हैं, ये सवाल सिर्फ फलसफा या कल्पना नहीं रहा, अब ये एक वैज्ञानिक सवाल है जिसे हम डेटा और प्रयोगों से टेस्ट कर सकते हैं।
तो रोथरी के काम से कुछ बड़े जरूरी संदेश मिलते हैं। पहला तो यही कि ग्रह विज्ञान एक बहुत तेजी से बदलता हुआ फील्ड है।
हाँ, वो प्लूटो वाली कहानी यही दिखाती है, आज जो हम जानते हैं कल नई खोज उसे बदल सकती है। विज्ञान हमेशा सीखता रहता है।
दूसरा, दुनियाओं की हैरान करने वाली विविधता। हमारे सौर मंडल में ही देख लीजिए, चट्टानी ग्रह, गैस के दानव, बर्फीले दानव, एक्टिव बर्फीले चांद,
और फिर एक्सोप्लैनेट्स, हॉट जुपिटर, सुपर अर्थ। लगता है कुदरत के पास आइडियाज की कमी नहीं है।
सच में, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा।
तीसरा, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, समझने का सबसे अच्छा तरीका है तुलना करना, कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी।
बिल्कुल।
जब हम शुक्र को देखते हैं कि वहाँ ग्रीनहाउस इफेक्ट कैसे बेकाबू हुआ, तो हमें पृथ्वी की जलवायु के बारे में चिंता होती है, उसकी नाजुकता समझ आती है।
और जब हम मंगल को देखते हैं कि उसने अपना पानी और वायुमंडल कैसे खो दिया, तो हमें पृथ्वी की कीमत और ज्यादा समझ आती है।
हाँ, ये सबक है हमारे लिए।
चौथा, रहने लायक जगह की परिभाषा बदल रही है और फैल रही है।
सही बात है। अब खोज सिर्फ दूसरी पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं के अंधेरे समुद्र भी जीवन के लिए उतनी ही या शायद ज्यादा उम्मीद जगाते हैं।
जीवन शायद ऐसी जगहों पर भी हो सकता है जहां हमने सोचा भी नहीं था।
पांचवा, ये सारी खोजें टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाई हैं। रोबोट वाले अंतरिक्षयान, ताकतवर दूरबीनें, कैसिनी, न्यू होराइजन्स, केपलर, हबल, अब जेम्स वेब, इन्हीं की बदौलत हम इतना जान पाए हैं।
हाँ, ये दशकों की मेहनत, इंजीनियरिंग और निवेश का नतीजा है।
और छठा, ग्रह कोई स्थिर चीजें नहीं है, ये सब बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं।
बिल्कुल, पृथ्वी की जमीन हिल रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स, बृहस्पति पर तूफान चल रहे हैं, प्लूटो पर नाइट्रोजन के ग्लेशियर बह रहे हैं।
हाँ, सब कुछ एक लंबी गतिशील कहानी का हिस्सा है।
रॉथरी की किताबों में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, मतलब सीधे कोटेशन नहीं पर उनके मुख्य विचारों का निचोड़।
हाँ, जैसे ये वाला विचार, ग्रह की परिभाषा कोई कुदरत का नियम नहीं है जिसे हमें खोजना है, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ वर्गीकरण है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी परिभाषाएं भी बदलेंगी।
ये प्लूटो वाले मामले पर बिल्कुल फिट बैठता है। दिखाता है कि वैज्ञानिक शब्द सिर्फ औजार हैं, कोई अंतिम सत्य नहीं, ज्ञान के साथ बदलते हैं।
बिल्कुल। और एक और गहरी बात, पृथ्वी को सच में समझने के लिए, ये कितनी अनोखी और नाजुक है ये जानने के लिए, हमें दूसरे ग्रहों को देखना ही होगा। शुक्र की झुलसी हुई जमीन और मंगल के जमे हुए रेगिस्तान हमें अपनी दुनिया के अतीत और शायद भविष्य के बारे में बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं।
ये तुलनात्मक ग्रह विज्ञान का दिल है। ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं, हमारे अपने ग्रह के लिए भी जरूरी है, सर्वाइवल के लिए।
सही कहा। और तीसरा, जो भविष्य की तरफ इशारा करता है, जीवन की खोज अब सिर्फ दूसरी पृथ्वी खोजने तक सीमित नहीं है। यूरोपा और एनसेलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं के अंदर छुपे हुए समुद्र हमें ऐसी जगहों पर जीवन की कल्पना करने पर मजबूर करते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, जहां ऊर्जा सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से मिलती है।
ये एस्ट्रोबायोलॉजी यानी जीवन की खोज के विज्ञान में एक बड़े बदलाव का संकेत है, पारंपरिक हैबिटेबल जोन से बहुत आगे की सोच।
बिल्कुल। अच्छा, ग्रहों के बारे में जानना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, इसके कुछ असर हमारी रोजमर्रा की सोच पर भी पड़ सकते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला तो एक ब्रह्मांडीय नजरिया मिलता है, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव मिलता है। जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, तो पृथ्वी पर हमारी अपनी छोटी मोटी परेशानियां, हमारे आपसी झगड़े, वो थोड़े कम जरूरी लगने लगते हैं। एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मिलता है। सही बात है। दूसरा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है।
शुक्र का हाल देखकर हमें समझ आता है कि ग्रीन हाउस गैसें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। मंगल को देखकर पता चलता है कि एक हरा भरा ग्रह भी बंजर हो सकता है अगर उसका वायुमंडल चला जाए।
हाँ, ये बातें हमें अपनी पृथ्वी की जलवायु का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती हैं।
और ये सिर्फ राजनैतिक बातें नहीं, ये ग्रहों का विज्ञान है, भौतिकी है।
तीसरा, वैज्ञानिक सोच बेहतर होती है।
बिल्कुल। रॉथरी की बातें सुनकर समझ आता है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है, कैसे आइडिया बनते हैं, कैसे मिशन डेटा भेजते हैं, कैसे उन डेटा से आइडिया टेस्ट होते हैं, और कैसे हमारी समझ धीरे धीरे बदलती है, बेहतर होती है।
इससे हम विज्ञान से जुड़ी खबरों को या दावों को ज्यादा समझदारी से देख पाते हैं।
चौथा, ये जिज्ञासा और सीखने की इच्छा जगाता है, खासकर बच्चों और युवाओं में।
हाँ, कौन नहीं जानना चाहेगा कि दूसरे ग्रहों पर क्या है, क्या वहाँ एलियन है?
ये सवाल ही अपने आप में इतने रोमांचक हैं। अंतरिक्ष के खोज की कहानियां विज्ञान और टेक्नोलॉजी में रुचि पैदा कर सकती हैं।
और पांचवा, हमें विज्ञान में लंबे समय तक निवेश करने का महत्व समझ आता है।
सही कहा। ये जो कमाल की खोजें हो रही हैं, प्लूटो की तस्वीरें, एनसेलाडस के फव्वारे, ये सब सालों दशकों की प्लानिंग, मेहनत और पैसे का नतीजा है।
ये दिखाता है कि सिर्फ जानने की इच्छा से शुरू हुई रिसर्च, क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च भी आगे चलकर कितने काम की साबित हो सकती है, अप्रत्याशित रूप से।
बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो शायद ये है कि प्लूटो जैसा दूर का छोटा सा बर्फीला पिंड भी इतना एक्टिव और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब बर्फ के पहाड़, बहते ग्लेशियर,
हाँ?
या फिर यूरोपा और एनसेलाडस की बर्फ के नीचे जीवन की इतनी मजबूत संभावना का होना, वो भी सूरज की रोशनी के बिना।
ये तो सोच ही बदल देता है कि जीवन कहाँ कहाँ हो सकता है। और मेरे लिए वो तुलनात्मक ग्रह विज्ञान की ताकत सबसे ज्यादा असरदार रही है। ये सोचना कि शुक्र और मंगल को पढ़कर हम अपनी पृथ्वी को बेहतर समझ सकते हैं, इसकी जलवायु, इसका भविष्य, इसकी नाजुकता, ये वाकई कमाल है। ऐसा लगता है जैसे पूरा सौर मंडल हमारी प्रयोगशाला बन गया है। हम सच में ज्ञान के एक सुनहरे दौर में जी रहे हैं।
बिल्कुल। डेविड रॉथरी का काम हमें यही याद दिलाता है कि हम ग्रहों की खोज के एक क्रांतिकारी दौर में हैं। हमारी समझ एक स्थिर 9 ग्रहों वाले सौर मंडल से बहुत आगे बढ़कर अनगिनत बदलती हुई विविध दुनियाओं तक पहुंच गई है।
हाँ, और ये न सिर्फ ब्रह्मांड के लिए हमारे आश्चर्य को बढ़ाता है, बल्कि हमें पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाली खास और नाजुक परिस्थितियों की ज्यादा कदर करना सिखाता है। और साथ ही ये हमें आने वाली खोजों के इंतजार में छोड़ देता है। अगला बड़ा राज क्या खुलेगा, कौन सी नई दुनिया मिलेगी,
बहुत रोमांचक समय है ये।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।